તારીખ 12-12-1998, શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન, પ્રશ્ન 420 અને 421 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 362.
સ્વાનુભૂતિ દર્શન 420મો પ્રશ્ન ચાલે છે. ખાસ પાત્રતા ઉત્પન્ન થાય તેના માટે શું કરવું જોઈએ? હિન્દી મેં લખ્યા, ખાસ પ્રકાર કી પાત્રતા માને મોક્ષ માર્ગ સમીપ હો જાય ઇસ ભૂમિકા મેં, ઓર આગે જા કરકે સમ્યક દર્શન આદિ મોક્ષ માર્ગ કી પ્રાપ્તિ હો જાય, ઇસકી પૂર્વ તૈયારી ઉસકો કહેતે હૈ ખાસ પ્રકાર કી પાત્રતા. ऐसी प्राप्त पात्रता वाले को अंतर में से माने आत्मा में से आपके आत्मा में से ऐसा भाव उठता है कि मुझे मेरे स्वरूप का अनुभव हुए बिना चलेगा नहीं, इसके सिवा मेरा छुटकारा नहीं, और स्वरूप प्राप्ति की ऐसी जरूरत महसूस होवे, ऐसी रुचि पैदा हो जाए और इसकी एक परिणति बन जाए कि जिस परिणति के बल से आत्मा के परिणाम अपने और खींचता रहे, वो परिणति आत्मा की और आत्मा को खींचे. ऐसे अंतर में से भाव उठना चाहिए. दो प्रकार के भाव होते हैं, एक राग की प्रधानता में राग और इच्छारूप भाव होते हैं, जिसमें इच्छा होकर के शांत हो जाते हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं चलता. जो अंतर में से भाव होते हैं उसमें पुरुषार्थ उठता है और वो कार्य नहीं हुए वहां तक चैन नहीं पड़ता, जीव बेचैन हो जाता है, मेरा कार्य नहीं हुआ, मुझे मोक्ष मार्ग नहीं मिला. मिथ्या तो अवस्था में मेरी आयु पूर्ण होगी तो अनंत काल तक फिर मनुष्य को मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है, और दुर्गति में बहुत दुख भोगना पड़ेगा. मुझे राग रहित वस्तु चाहिए, मैं पूर्ण वितराग होना चाहता हूँ, इसलिए कि जितना राग है उतना दुख है, और थोड़ा सा भी दुख रहे वो कौन चाहेगा? जीव के अब सभी जीव के अभिप्राय में है, थोड़ा भी दुख कोई चाहते नहीं, अल्प समय के लिए भी दुख चाहते नहीं, सदा सर्वदा हमेश के लिए पूर्ण सुख हो, ऐसा ही सब चाहते हैं. लेकिन राग में सुख माना है, राग के विषयभूत पदार्थ में सुख माना है, तो सुख के बजाय दुख की प्राप्ति हो रही है. चाहिए सुख, प्रयत्न भी सुख के लिए, बजाय सुख प्राप्त होना होने के पहले दुख की प्राप्ति हो रही है। क्यों? कि सुख कैसा होता है, कहाँ होता है, कैसे प्राप्त होता है वो मालूम नहीं। तो कहते हैं कि मुझे राग रहित वस्तु चाहिए, मैंने मुझे राग रहित मेरी अवस्था चाहिए, ऐसी जिसकी भावना है वो पूर्णता की भावना है, पूर्ण शुद्धि की भावना है, वह स्वयं अंतर में से अपनी परिणति प्रकट किए बिना नहीं रहता, वो रहेगा ही नहीं, उसको दूसरी हालत सुहाएगी नहीं। संसारी जीव को संसार के राग की हालत सुहाती है, उसमें मिठास आती है, मिठापन लगता है, और इसके फल में दुख भी भोगता है, फिर भी ऐसा ही चालू रहा करता है। कहते हैं कि जिसको मुक्त होना है, जो पात्र जीव है, उसको तो ऐसी भावना आती है कि मुझे बिल्कुल राग का एक कण भी नहीं चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा ध्येय है, यही मेरी भावना का विषय है, और उसमें अंतर में से अपनी परिणति स्वरूप परिणति प्रकट किए बिना वो रह नहीं सकता, वो स्वरूप की प्राप्ति करता ही है, ऐसा ही प्रयास करता है। ये भावना जो है एक ऐसी चीज है कि इसके विरुद्ध जो भी परिणाम उठते हैं जीव को, तो भावना को ठेस पहुंचती है। भावना है एक कोमल परिणाम है, तो भावना हुई इसका मतलब नहीं हुआ कि वितरक हो गया, अभी तो मुमुक्ष होता है, मोक्ष मार्ग भी नहीं चालू हुआ, शुरू ही नहीं हुआ, तो संसार के परिणाम तो आते रहेंगे, होते रहेंगे, फिर इसका क्या? वो परिणाम विरुद्ध भावना है, भावना विरुद्ध ये परिणाम है, तो भावना को ठेस पहुंचती है। इसलिए भावना वाले को जागृति रखनी नहीं पड़ती, उसको ठेस पहुंचती है, जागृति उसको सहज उत्पन्न हो जाती है कि ये मेरे परिणाम ठीक नहीं चल रहे हैं, मेरी भावना के अनुकूल नहीं चल रही है, मेरी भावना के विरुद्ध चल रहे हैं मेरे परिणाम, उनको सुहाते नहीं, और उसको शांत करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए वो हमेशा हमेशा प्रयत्नशील अपनी भावना के बल से रहता है। पहले कहा है ना कि जगत को शून्य होना पड़े, वो जो वचनामृत ग्रंथ है बेंसरी का, उसमें 21 नंबर का वचनामृत है, अपने अनुभव से बहुत जबरदस्त बात की है वहाँ, कि अगर जीव को आत्मा में से चैतन्य में से उत्पन्न हुई आत्मकल्याण की भावना होती है, वो भावना कभी भी निष्फल नहीं जाती, निष्फल नहीं होती, वो सफल होती ही है। अगर ऐसी सही भावना, सच्ची भावना, खरी भावना सफल नहीं हुए, तो जगत को मैंने 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, वो बात वहां उन्होंने की है। 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, एक परमाणु भी का नाश नहीं होता जगत में से, तो 14 ब्रह्मांड का नाश तो होगा ही कहाँ से, कि हो ही नहीं सकता, तो नाश हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कि भावना निष्फल हो जा ही नहीं सकती। मैंने 14 ब्रह्मांड के अस्तित्व की जो अनंत शक्ति है, ताकत है, इससे ज्यादा ताकत मुमुक्षु की आत्मकल्याण की भावना में होती है, और उसको आत्मकल्याण होता है, वो निर्वाण पद को प्राप्त होता ही है। वो निर्वाण पद के नींव में क्या चीज पड़ी है कि ऐसी एक भावना पड़ी है तो इतनी बलवान होती है, इतनी ताकत वाली होती है। और ये बात अनंत तीर्थंकरों ने कही है। क्या लिखा है वहां, ऐसी बात अनंत तीर्थंकरों ने कही है, सिर्फ मैं कहती हूं वो बात नहीं, क्या अनंत तीर्थंकर की साक्षी है उसमें। साक्षी क्या है, गारंटी है। क्या चाहिए उनको, तो अच्छी कंपनी हो तो हमारी ताकतें उतना शेयर खरीदते हैं उसके। अच्छी कंपनी के शेयर बाजार भाव में नहीं, कंपनी भाव में मिल जाता है तो कितने लेंगे कि जितनी ताकत है। ताकत क्या, कुछ लोन लेकर भी लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे। जीव ऐसा व्यापारी है, अगर उसको पता चल गया कि अनंत तीर्थंकरों की गारंटी है उसमें, शेयर में तो फिर भी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी कंपनी का कभी भी दिवाला निकल सकता है। यहाँ तो तीर्थंकरों की गारंटी है कि अगर तुमको खरी भावना उत्पन्न हुई तो तुम्हारा निर्वाण पद अवश्य होने वाला है ही। कितनी बड़ी प्रेरणास्पद बात है, कितनी बड़ी प्रेरणास्पद बात है, और तुम्हारी भूमिका में वो असंभव नहीं है, तुम कर सकते हो। कोई भी जीव लास्ट मोमेंट तक, आखिरी क्षण तक कितना भी पापी हो, दूसरे क्षण में वो आत्मकल्याण की भावना कर सकता है और हो सकता है। उसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक सबूत है भगवान महावीर स्वामी का जीवन। महावीर स्वामी का और हमारा सबका जीव अनादि से है, लेकिन सबका अनादि का इतिहास मिलना संभवित नहीं होता। महावीर स्वामी का इतिहास शुरू होता है आदिनाथ भगवान के काल से, इसके पहले वो कहाँ थे कौन थे मालूम नहीं। आदिनाथ भगवान के वो पौत्र थे और आदिनाथ भगवान के सबसे बड़े विरोधी भी थे, गालियां देते थे। मैं जानता हूं मेरा दादा कितना मायाचारी है, मैं जानता हूं, मैं इसका सबूत दे सकता हूं। देखिए पूरा समुपसरण है ना, वो इंद्रजाल है, वो यहां रहेगा नहीं कुछ टाइम में, बिल्कुल यहाँ इसका एक पत्थर भी नहीं मिलेगा, इसका एक ईंट का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। और बात ऐसी होती है, देवों की रचना होती है, वैकरिक परमाणु बन जाते भी जल्दी से और अल्प हो जाता है भी जल्दी से, नरक में गए। देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष के विराधना करने वाले को नरक निगोद का स्थान जल्दी मिलता है। फिर वहां से जो क्रोधी प्राणी होते हैं तिर्यंच, कभी कभी मनुष्य होते थे। जब जब वो मनुष्य होते हैं एक क्रोड़ा कोड़ी सागर में, जब जब वो मनुष्य हुए, जैन धर्म का, धर्मात्माओं का बहुत विरोध किया है। ऐसे वो करते आए दुख भोगते ही आए। एक कोड़ा कोड़ी सागर तक बहुत दुख हुआ, बहुत बार गए। वो ये सिंह के भाव में नरक से आए हैं, सिंह के भाव में जो आए हैं नरक से आए हैं, क्रोधी प्राणी हुए हैं, भूख लगी है, एक हिरण को मारते हैं, खाते हैं, उसी वक्त एक चमत्कार हो गया। कोई चारण रूपधारी दो मुनिराज आकाश में जब जा रहे थे, वो आकाशगामी ने विद्या को चारण रुद्धि कहते हैं, उसकी नजर नीचे गई तो एक सिंह एक हरण को मार करके खाता है। ज्ञान था मुनियों को, अरे ये तो महावीर स्वामी का जीव है, तो होना वाला अंतिम तीर्थंकर है इस काल का। करुणा ही नीचे उतरे, इसकी काललब्धि पक गई थी, तो जिज्ञासा में आ गया, ये क्या, लोग मुझे देख करके भगने भागते हैं, ये तो मेरे सामने आ रहे हैं, क्या बात है। मुनिराज के अलौकिक शांति को देखते ही इनके परिणाम शांत होने लग गए और एकदम जिज्ञासा में आ गए कि क्या बात है, ये क्या हो रहा है मुझे। मुनिराज उनकी भाषा भी जानते थे, वो लब्धिधारी थे, तो उसको संबोधन करने लगे। प्रथम ही वेदना में आए, अपने किए हुए दोषों पापों के परिणामों की बहुत पश्चाताप हुआ और वो पश्चाताप आंसू के द्वारा व्यक्त होने लगा। खाने का तो एक बाजू रह गया हरण को, और वो उपदेश सुनने लगे। देखो पिछले क्षण तक वो पाप के परिणाम में थे, हरण का शिकार किया हुआ था, संगनी पंचेंद्रिया हरण को मार दिया था, वो मर गया था, उनके मुर्दे को वो खाता था। पिछले क्षण तक क्या था, पाप के परिणाम थे। भावना में आ गया, आत्मकल्याण की भावना में आगे, वो भावना वो वेदना का स्वरूप है, प्रथम भावना का स्वरूप वेदना धारण करती है, भावना खुद वेदना को धारण करती है, सबसे प्रथम ये होता है सभी को। हाँ गहरी चोट लगती है, बहुत गहरी चोट लगती है, तभी ये भावना आती है, अंतर में से आती है, बस उसका निवेड़ा हो जाएगा। और उतना हम कर सकते हैं अभी भी चाहे तो, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ बहुत होता है, मुनि दशा का पुरुषार्थ तो इससे भी कड़ा है, आगे का पुरुषार्थ इससे भी जबरदस्त है, लेकिन भावना तो कोई भी जीव कर सकता है, कभी भी कर सकता है। देखिए मोक्ष मार्ग कितना सरल है, आत्मकल्याण का उपाय कितना सरल है, कितना सुंदर है, कितना सुविधा युक्त है, कि कोई भी जीव कभी भी आत्मकल्याण की भावना कर सकता है। कितना बड़ा ऐतिहासिक दृष्टांत महावीर स्वामी का, और ऐसी भावना वाले को अगर इधर उधर लक्ष्य नहीं गया तो जो तकलीफ है वो इधर उधर लक्ष्य जाने की, अगर नहीं गया तो उसी उपदेश के श्रवण के दौरान उनको वेदना तो आई, उनको मुनिराज की पहचान हुई कि ये कोई वितरागी महापुरुष है जो मुझे ले जा रहे हैं मेरे आत्मकल्याण की दिशा में, उनकी पहचान भी आई। उस उपदेश में उनके स्वरूप को श्रवण किया तो स्वरूप की पहचान भी आई, और तीसरे तबके में स्वरूप का अनुभव भी आया, ज्ञान दशा को प्राप्त कर लिया। ज्ञान दशा को प्राप्त करते ही मालूम हो गया कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं इस हीन पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ, ये पर्याय मुझे कोई काम की नहीं है, मुझे इसका कोई मोह नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, बाकी तो कोई देह छोड़ना नहीं चाहते, विष्टा का जीव भी विष्टा से निकलना नहीं चाहता और मनुष्य भी अपना देह छोड़ना नहीं चाहता और कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने पसंद कर लिया कि हमको ये देहहीन पर्याय है, अपराध से हमारे अपराध से हुई है, अब भी से कोई खाना पीना बंद हमारा, जहाँ तक आयुष हो संकल्प कर लिया, संलेखना धारण कर ली, खाना पीना बंद कर लिया, क्योंकि किसी घास खाता नहीं। और मांस को खाने का उनको हो नहीं सकता, परिणाम चलते नहीं थे, उनका परिणाम ही नहीं चलते थे, खाना बंद कर दिया, कोई कठिनाई नहीं लगी। हमको छाछ रोटी में लगती है, इनको नहीं खाने में नहीं लगी। देखो क्या देखा सामने, कि अपना सिद्ध पद को देख लिया, हैं? अनंत लाभ देखा, अनंत सुख देखा, इसके आगे ये कुछ नहीं है, अल्पकाल का कुछ परिश्रम हो तो कुछ नहीं है, समुद्र में बिंदु भी नहीं है, और आयुष पूरा करके स्वर्ग लोक में पधारे। फिर तो सम्यक दृष्टि को दो ही गति होती है, स्वर्ग और मनुष्य, देव और मनुष्य दो ही गति होती है, तीसरी गति होती नहीं। ऐसे दसवें भव में तीर्थाधिनाथ हुए कि जिसका शासन अभी चल रहा है और जिसके शासन के उपकार वश हम लोगों को ये चीज मिल रही है, तीर्थंकर का उदय होता है। बहुत धर्मात्मा होते हैं, बहुत केवली होते हैं, बहुत लोग होते हैं, वो परंपरा चालू रहती है और पंचम काल में अंत तक वो चालू रहेगी, कोई न कोई धर्मात्मा होते रहेंगे और तीर्थंकर का मार्ग चालू रहेगा। क्या कहते हैं कि ऐसी भावना बलवान होती है, इसलिए अपनी बलवान परिणति ही अपने को प्रकट किए बिना नहीं रहती, परिणति हो जाती है। भावना से बार बार उपयोग होता है, वो उपयोग में तीव्र रस होता है और उससे परिणति बनती है। भावना उपयोग परिणति, भावना से बार बार उपयोग सहज होता है और बार बार भावना पूर्वक का रस वाला उपयोग से परिणति बन जाती है। वो परिणति अपने स्वरूप को प्रकट किए बिना नहीं रहती। ऐसा कुदरत का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है, कुदरत का स्वभाव है। काल लब्धि पक्ति है तो उपादान की भी तैयारी होती है और निमित्त भी मिल जाता है। लेकिन वो अवलंबन लेने योग्य मुद्दा नहीं है। हमको तीव्र जरूरत महसूस हुए और रुचि प्रकट हुए, भावना हो जाए तो हमारी काल लब्धि पक गई है। ये काल लब्धि पकी उसका सिम्टम्स है। तो दो प्रकार से बात होती है, कभी खुद को भाव उठता है और काल लब्धि पक गई है, कभी काल लब्धि पकती है सहज सब घटना घटती है, ऐसा भी बनता है। हमको तो भावना को उत्पन्न करना चाहिए, यही खास प्रकार की पात्रता है। परिणति अपने को अपनी ओर खींच ही लाती है। ऐसी जो परिणति होती है, मुझे स्वरूप ही चाहिए, मुझे स्वरूप ही चाहिए, वो परद्रव्य के प्रति उसका खिंचाव बंद हो जाता है, उसी को कहते हैं विरक्ति। वो निरसपना है तो उसका खिंचाव बंद हो जाता है, बस सहज ऐसा होता है। जगत को शून्य होना पड़े अर्थात स्वभाव स्वयं अपना कार्य किए बिना नहीं रहता। क्या है, भीतर में भी बेहद ताकत है। तो ये भावना है उस ताकत को जगाता है, जगाती है। ताकत तो बहुत है, लेकिन ताकत पावर के रूप में है, परिणाम के रूप में नहीं है। आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत शक्तियां हैं, उसको प्रकट करने के लिए एक ही उपाय है, एक ही इलाज है, शस्त्र है, भावना का। और ये बात उन्होंने अपने अनुभव से की है। कुछ जरूरी नहीं, महावीर स्वामी का इतिहास देख लो ना। हमने तो नहीं सुना। हाँ? क्या बात आती है। अच्छा, अनजाने में हुआ वो संज्ञा में। कभी ऐसा भी हो सकता है, हमको तो इससे ज्यादा मिला है। हम तो तीर्थंकर के समव शरण में अनंत बार जाके कोरे के कोरे रह करके वापिस आए हैं, और वो भी जैन होकर के, द्रवलिंगी होकर के, मुनि होकर के। दूसरी बात क्या करें, वो तो भील थे, ये तो जैन मुनि दीक्षा धारण करके समोसरण में जाते। सब कुछ हो चुका है तो उसको कारण क्या बताएं, उसको कारण कैसे देंगे। जब खरी भावना हुई तब कारण और तब कार्य, इसके पहले की सोच हुई मत। हमको सोचने जैसा नहीं है, इसलिए कि हमको तो सब कुछ बहुत मिला है और अभी भी मिल रहा है। तो क्या क्षति रही भावना की, बस बात तो अपने लिए, तो अपना प्रयोजन की बात तो अपने को पकड़नी चाहिए ना, वरना हम क्या करेंगे कि उसको कैसा कुछ ऐसा हुआ था, हमको कुछ ऐसा अभी तक नहीं हुआ होगा, इसलिए हमको कुछ भावना नहीं हो रही है, गलत बात है। ऐसा अवलंबन हमें को हमको नहीं ढूंढना चाहिए। पानी की प्यास लगती है तो हम प्रारब्ध पर का अवलंबन नहीं लेते कि प्रारब्ध होगा तब पानी मिलेगा, हम तो बैठे हैं इधर आराम से, आएगा पानी सामने से, बैठते कोई हमारा पुस्तक सबसे जो बड़ी बात है वो भावना, उसकी कमी मैंने पूरी करनी है। अब सवाल ये होगा कि भावना जगाने के लिए क्या करना, क्या भावना तो जब हम करें तब होती है उसी क्षण, उसके लिए कोई पूर्व तैयारी की जरूरत नहीं। इस बात को समझने के लिए, इसका मूल्यांकन होने के लिए सत्संग हो सकता है, लेकिन सत्संग करते हो सबको भावना होती है ऐसा तो नहीं बनता, जो करते हैं उसको होता है, नहीं करते उसको नहीं होता, सीधी साधी बात होती है। सत्संग भी बाह्य साधन है, बाह्य निमित्त है, जो करते हैं उसको निमित्त, नहीं करते उसके लिए वो निमित्त क्या कहा जाता नहीं है, निमित्त कहलाता नहीं। जगत को शून्य होना पड़े अर्थात स्वभाव स्वयं अपना कार्य किए बिना ही बिना नहीं रहता, वो अपने आप ही होता है। भावना होती है तो स्वभाव अपना काम किए बिना रहेगा नहीं, तो भीतर की शक्तियां अंदर से जोर करती है। तो भावना होती है तो अंदर से अपनी शक्तियां खुद उठने के लिए तैयारी करती हैं, तो भीतर के परिणाम ही बदल जाते हैं, भीतर की दुनिया पूरी बदल जाती है, परिणामों की जो दुनिया है बिल्कुल बदल जाती है। भावना वाले ऐसी परिस्थिति मनुष्य को उत्पन्न होती है। स्वयं अपनी परिणति प्रकट न करे तो वस्तु ही नहीं रहती है, वस्तु में ताकत है, अपना परिणाम अपना निर्माण पद अपने में से उत्पन्न होगा, कहीं बाहर से आने वाला नहीं, चाहे सम्यक दर्शन हो चाहे निर्वाण पद हो, भीतर में से आता है। हाँ, वर्तमान क्षण में हम कर सकते हैं, कोई भी वर्तमान में कर सकते हैं, भूत भविष्य में काम नहीं होगा। अपने हाथ की बात, हम बिल्कुल इसके लिए स्वतंत्र है, कोई पराधीनता नहीं, क्योंकि हमारे परिणाम का विषय भीतर में किसी की पहुंच है, भीतर में कोई दखल नहीं कर सकते, किसी की पहुंच नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं होता ना, हमारे परिणामों में किसी का हस्तक्षेप हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता। क्या आप अपनी आत्म कल्याण की भावना में नहीं आ सकते? आपके हजार प्रश्न होंगे, हजारों समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ज्ञानी क्या तो एक ही प्रश्न है आपके सामने कि जब आपको सुख चाहिए, आपको सुखी होना है, तो कम से कम आप अपने खुद के आत्म कल्याण की, स्वयं के आत्म कल्याण की भावना में क्यों नहीं आ सकते? इसमें कौन से आपको तकलीफ है वो बताइए। दुखी होना है क्या? मोह करके दुखी होना है क्या? अपने आप को पूछ लेना है कितनी सरल और सादी बात है। नहीं समझ में आए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी विद्वत्ता वाली बात भी नहीं है। तो कोई शास्त्र पढ़े तो बात समझ में आए ऐसी कोई बात नहीं है, शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। भावना में आने वाले को शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका भावना से उसका प्रयास का कार्य चालू होता है, वो प्रयास में लगे रहता है। पढ़े कभी मौका मिले तो, बाकी तो अपने काम में लगे रहते हैं भावना के कारण। बस काम चालू किया, फिर कोई चिंता नहीं। चिंता तो उसको होती कि जिसको काम नहीं होता है और जो नहीं करता है उसको होती है। जिसका काम चालू हो गया तो चलने लगा, उसको चिंता किस बात की फिर? और जिसको भावना होती है, भावना के अनुसार थोड़ा बहुत प्रयास चलता है, उसको विश्वास भी आ जाता है कि अब मेरा कार्य हो ही जाएगा, होने वाला ही है, हुए बिना रहेगा। क्यों? कि मैं खुद ही, मेरा आत्मकल्याण नहीं हुए वहां तक मैं खुद ही बिना प्रयास रह सकने वाला नहीं, मैं रह ही नहीं सकता ना, ये हालत हो जाती है। और इससे उनको आत्मविश्वास पैदा होता है कि अब मेरा कार्य हुए बिना रहेगा। ज्ञानियों ने मार्ग को सरल कर दिया है। जैसे पहले तो ऐसे लगे कि मोक्ष कौन प्राप्त कर सकता है, कि जो परिवार घर मकान समाज छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, जैसे योगियों का ये काम है, अपने परिणाम देखते हुए ऐसा लगे कि अपने अपना बूटा नहीं है, उसमें कोई अपना काम नहीं है, अपन ने ऐसा नहीं कर सकते, विश्वास ही नहीं आता अपनी ताकत पर, अपने परिणामों को देख कर। लेकिन भावना में तो आ सकते हो, फिर विश्वास आ ही जाएगा। भावना में जब भी आओगे विश्वास आ ही जाएगा, उतना ही करने की जरूरत है, और उसमें कोई आपत्ति है ही नहीं, हो भी नहीं सकती। तो बहुत ठोस बात किया है भावना के विषय में, वही पात्रता है मोक्ष मार्ग के लिए, वही पात्रता है। और ऐसे पात्र जीव का काम हो जाता है अल्पकाल में। चार सौ बीस हुआ, 421, गहराई से ग्रहण करने का क्या अर्थ है? मुझे ऊंडा नहीं पूछ इतने सो इसका प्रश्न में क्या बात लड़की ली है कि सुनते हैं तो सभी पढ़ते हैं सुनते हैं लोग और याद भी रहता है समझ में भी आता है तो उसको धारणा कहते हैं। जो ज्ञान धारण किया उसको कहते हैं धारणा, स्मृति रूप धारणा है। तो केवल स्मृति रूप जो ज्ञान है उसकी विस्मृति कालांतर में हुई जाती है। तो उसने ज्ञान ग्रहण किया लेकिन ऊपर ऊपर से किया, गहराई से ग्रहण करना चाहिए ऐसा उपदेश है। तो गहराई से माने क्या, ये प्रश्न हुआ है। बाकी क्या जवाब देते हैं तो पढ़ेंगे तब तो मालूम होगा। अपन थोड़ी चर्चा कर लें कि कौन सा ज्ञान टिकता है कौन सा ज्ञान नहीं टिकता है। तो जो स्मृति रूप ज्ञान है स्मरण मात्र है, धारणा कोरी धारणा है, वो टिकने वाली नहीं है, वो नाश हो जाता है। लेकिन जो अनुभव ज्ञान है ना वो टिकता है, वो जाता नहीं है। जैसे हम पानी में तैरने के लिए 14 साल की उम्र में सीखे हैं, स्टैंडर्ड 4th में स्टडी करते थे तब हमारे गांव में जो नदी है नदी में हम पानी में तैरने को सीखे हैं। बाद में तो मालूम नहीं है, अभी 52 साल हो गए, 51 साल तो कम से कम हो गए, 51 से 65 पूरा हो गया, 51 साल में शायद हमने कोई तैरने का प्रैक्टिस नहीं किया। आदमी कोई धक्का मारे और पानी में गिर जाए हम कोई कारण से तो हमको सीखना नहीं पड़ेगा कि कैसे पानी में तैरे। वैसे ही तैरने लग जाते हैं, कैसे तैरते हैं अभी ख्याल में आता है, पानी में हम कैसे तैरते हैं वो भी ख्याल में आता है, पानी नहीं है तो भी ख्याल में आता है कि कल कैसे होती है पानी में तैरने के। इसको कहते हैं अनुभव ज्ञान। जैसे कोई साइकिल चलाता है, हम 10 साल की उम्र में साइकिल चलाने सीखे थे, 10-11 साल की उम्र में, तो 11-12 साल की उम्र में अगर साइकिल चलाई, अभी भी साइकिल पर बैठे तो साइकिल चला सकते हैं, गिरते नहीं, बैलेंस रह सकते। स्कूटर तो चलाते ही, स्कूटर तो अभी चलाते हैं कभी भी, तो 2-व्हीलर है ना, बैलेंस रखना पहले तो सीखना पड़ता है कि बैलेंस कैसे रखना। तो अभी स्कूटर ऊपर नहीं बैठे तो कैसे बैलेंस रख सकते हैं वो हमें समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, कैसे बैलेंस रख सकते हैं बिना स्कूटर के। इसको कहते हैं अनुभव ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान। ये जो प्रयोग है वो प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए है, सुनना है पढ़ना है वो थियोरेटिकल ज्ञान है, विचार है वो थियोरेटिकल ज्ञान है, और प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिकल ज्ञान है। समझ को लागू करना प्रैक्टिकल ज्ञान क्या है, समझ को लागू करना हमारे परिणमन में, समझ को लागू करना उसको कहते हैं प्रैक्टिकल। वो ज्ञान जाता नहीं जीवन पर्यंत जैसे नहीं जाता। तो ये तो आत्मा का जीवन है तो अनंत काल तक ये ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है तो अनंत काल रहता है। गहराई से जो ग्रहण करने की बात है वो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात होनी चाहिए। तभी तो भविष्य के लिए काम में आएगा। तो वो प्रश्न का उत्तर जो है कल के स्वाध्याय में विशेष रूप से लेंगे। यहाँ तक उत्पन्न થયેલી પૂર્ણ આત્મકલ્યાણ की આત્મકલ્યાણ ની ભાવના એ ભાવના उत्पन्न થયેલી પરિણતિ કે જેમાં એવું લાગ્યા કરે आत्मा प्राप्त कर्या सिवाय छूटो नहीं, एक खास प्रकार ने पात्रता नु स्वरूप छे। એવી પાત્રતા થી અવશ્ય મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે।